अग्नि परीक्षा से अग्नि शिखा जीवन, अग्नि परीक्षा से अग्नि शिखा जीवन। आज की चर्चा का ये विषय है, केवल और केवल अपने जीवन को संपूर्ण ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित करने वाली बहनों के लिए। ये जीवन अग्नि शिखा है, अग्नि की लौ की तरह है, लटकती हुई अग्नि, प्रज्वलित लौ। वो कौन सी ऐसी परीक्षा है जो हर ऐसे जीवन वाली आत्मा को देनी होती है? वो कौन सी ऐसी परीक्षाएं है? वहां शास्त्रों में दिखाया है सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। राम को किसी ने नहीं पूछा, सीता को पूछा। पूछना चाहिए तो राम को चाहिए था। सीता तो एक ही स्थान पर थी, बंदरों और जंगलों में तो राम घूम रहा था, पूछना तो उनको चाहिए, परीक्षा तो उसे देनी चाहिए थी। परंतु भारतीय सभ्यता और संस्कृति कुछ ऐसी है कि स्त्री को ही परीक्षा देनी पड़ी, जो भारतीय परंपराओं को मानने वाले हैं वो श्री राम को आदर्श राजा बताते हैं। यहां तक कि जब रावण को मारते हैं और सीता को छुड़ाते हैं तो वो उनसे कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मैंने रावण को तुम्हारे छुड़ाने के लिए नहीं मारा है, लोक मर्यादा की रक्षा करने के लिए। जो अत्याचार अनादर हुआ है उसकी रक्षा के लिए। और क्योंकि तुम्हें रावण ने स्पर्श किया है इसके लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और वो देती भी है। कुछ दूसरे मतावलंबी कहते हैं कि वो जो सीता थी जो रावण चुरा ले गया वो तो एक छाया थी, असली सीता तो अग्नि में छिपी हुई थी। कोई लोग जो दूसरी धारा के हैं, विचारधारा के, वो मानते हैं कि ये स्त्री विरोधी परंपरा थी और राम ने यह अन्याय किया है। अलग अलग विचारधारा के लोग इस प्रसंगों को अलग अलग रीति से देखते हैं। कोई उसे आदर्श कहता है, कोई उसे अत्याचारी और अन्यायी कहता है। जो भी हो, ऐसी अग्नि परीक्षा है तो हमने ऐसी सात अग्नि परीक्षाओं के बारे में थोड़ा चिंतन किया। ऐसी वो सात परीक्षाएं जो हरेक को कभी ना कभी देनी ही है। इन सातों में से एक भी नहीं छूट सकती हरेक को। जितनी बहने हैं इस यज्ञ में सेंटर निवासी, हरेक को देनी पड़ेगी। वो कौन सी परीक्षाएं हो सकती है और कैसे उन्हें दे, और वो देते समय कैसे समझे ये पेपर है और इसे पास करना है। विभिन्न भिन्न लोगों से आ सकती है। तो ऐसी सात परीक्षाओं की हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली परीक्षा है लौकिक की तरफ से। सबसे पहली परीक्षा है लौकिक से। क्या हो सकता है लौकिक से? सभी अनुभवी है क्या क्या परीक्षाएं आ सकती है। उस घर को छोड़कर इस घर आ गए, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, या सहयोगी है या सभी योगी है, या बात करते हैं नहीं करते हैं, समीप है दूर है, इस शहर में है किसी और शहर में, या है ही नहीं, वो दूसरी बात है। पर उनकी जगह फिर लौकिक संबंधी कोई ना कोई तो है। उनके द्वारा कभी ना कभी कोई ना कोई परीक्षा आनी ही है। पहले तो इस बात को स्वीकार करके रखो और उस परीक्षा को हमें पास करना ही है। तो कौन सी वो परीक्षा है? उस लौकिक की तरफ से आ सकती है, अनुभव से सभी बताएंगे। आ चुकी है, आ रही है और आ सकती है, तीनों ही। वो तो ये परीक्षा इधर से ज्यादा है। वो एक दूसरा विषय है कि उनका मोह खींचता है, चलो वो भी परीक्षा ही है एक, उस परीक्षा में भी पास होना है। उनका मोह खींचता है एक। दूसरा, लौकिक से क्या क्या परीक्षाएं आ सकती है? लौकिक में कोई समस्या आ जाती है तो हमें बुलाते हैं, जैसे कि हाँ जैसे मेरा क्या हाँ, तो कोई भी घर में समस्या है और सब ज्ञान में है और बहन इधर है, बेटी यहाँ है, तो कोई भी समस्या है तो वहाँ जाना पड़ता है। और क्या कहेंगे? बस इतनी। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली परीक्षा है लौकिक से और लौकिक में है पहला मोह बताया, दूसरा उनकी समस्याओं में हमें बुलाते हैं, और तीसरा यदि उनमें से कोई बीमार हो गया, बुलाए ना बुलाए, हलचल इधर, वो भी एक पेपर है। बीमारी या स्वजनों की मृत्यु, वो भी इधर हलचल में ला देती है। हाँ, यदि संपूर्ण नष्ट हुआ है तो नहीं होगा, परंतु यदि बहुत ज्यादा मोह है, जितना अधिक मोह उतना अधिक दुख, उसी अनुपात से। वेदांती बहन अपना अनुभव सुनाते हैं, कभी शायद उनके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा था और वो मधुबन में थे, संदेश आया था तो दादी से उन्होंने कहा कि चंद्रिका बहन तो है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है। उनकी लौकिक बहन, वो तो है, मैं क्यों जाऊं, और मैं जाके भी क्या करूं, शरीर तो अब उन्होंने छोड़ दिया है, अब मैं करूं क्या। कैसी नश्वरूपा स्थिति है, पिताजी ने शरीर छोड़ा है, वो कहती दूसरी बहन है वो देख लेगी, मैं यहां सेवा में हूं, फिर भी दादी ने भेजा, शायद पता नहीं गए या नहीं गए थे, पर सुना है ये बात। तो स्वजनों की बीमारी और स्वजनों की मृत्यु हलचल में लाती है। और समस्या जो शब्द कहा उसमें क्या क्या, दो इतनी और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि धन के संबंध, धन का भाव, को नौकरी नहीं लग रही है, चाहे भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, एडिक्शन कोई है जो कि बहुत शराब पीता है, या फिर इस तरह की कोई ना कोई लत उसको लगी हुई है, चाहे वो शराब है, चाहे सिगरेट है, बीड़ी है या और कुछ। और कोई है छोटा भाई या बड़ा भाई जो पढ़ाई नहीं करता है, जिसको कुसंग मिल गया है। कोई है कि जो पहले ज्ञान में चलता था अब छोड़ दिया है, चाहे भाई या बहन, यह भी हलचल में लाता है। ये सारी परिस्थितियां लौकिक की तरफ से आ सकती है और आती ही है। विस्तार तो बहुत है, परंतु संक्षेप में ये सब बातें हैं। और जो हम हैं, जो यहां रह रहे हैं, वो हलचल में आते हैं। तो ये भी एक क्या है, अग्नि परीक्षा है। और जब तक इस परीक्षा को पास नहीं करते, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये पेपर उधर से आते ही रहे, आते ही रहे, आते ही रहे, और वो हमको खींचते ही रहे, खींचते ही रहे, हम कब आगे बढ़ेंगे? ये मोह खींचता ही रहे। और दूसरा एक है, क्या हमारे वहां जाने से उनकी परिस्थिति, उनकी समस्या ठीक होने वाली है? ये बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। हौसला मिलता है और हौसला मिलता है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार बुलाते ही रहे तो हौसला तो देना है, परंतु वो हौसला कभी मोह ना बन जाए, वो डिटैचमेंट कहीं खो ना जाए, और ऐसा ना हो जाए कि उनकी स्थिति यहां है, हमारी स्थिति ऊपर थी, हम उनकी स्थिति ऊपर लाने गए और उनके साथ जाते ही हमारी भी स्थिति वही हो गई जो उनकी थी। अब दोनों एक ही तल पर है। अब ना हम उनकी, हम अब जा ही रहे, बार बार जा रहे हैं, परंतु हमारा जाना कितना मदद कर रहा है, क्योंकि वहां जाते ही हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। उनके निगेटिव कहो या समस्या के कहो या दुख के कहो या मोह के वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग है कि उस वातावरण में जाते ही यहां की हमारी एक सहज वैराग्य वृत्ति, एक सहज डिटैचमेंट की अवस्था, एक सहज प्रभु प्रेम की अवस्था से हम स्वतः ही नीचे आते हैं और उनके तल पर हम हो जाते हैं। ज्ञान में वो भी है, पर वो नीचे के तल पर है। हम यहां थे, यहां इसलिए थे कि डिस्टेंस ज्यादा था, अलग थे शारीरिक रीति से भी। अब वहां पहुंचे, पहुंचे हौसला देने के लिए, मदद करने के लिए, तोड़ निभाने के लिए, और दोनों ही समान। घंटों डिस्कशन चल रहा है कैसे समस्या को सुलझाया जाए, ठीक करा जाए, परंतु हो कुछ भी नहीं रहा है, वहीं गोल गोल घूम रहे हम भी उनके साथ। ऐसा है या नहीं है? क्या कहें? एक है, हाँ, वो एक प्रश्न बहुत अच्छा है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा सबसे पहला कर्तव्य है अपनी स्थिति, उसके बाद ही बाकी सब। हम अगर स्थिति खोकर उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको कभी मदद नहीं पहुंचेगी, ना मिलेगी। ये एक झूठा दिलासा हम अपने आप को दे रहे हैं कि हम वहां गए और उनको सहारा, पर थोड़ी मदद मिली हमारी वजह से। मदद किस चीज से मिलती है? यदि हम यहां दुखी हो जाए और कोई गृहस्थी में एक व्यक्ति है जो पहले ही दुखी है, वो आकर हमसे मिले और हमारी काउंसिलिंग करे, क्या हमें फायदा होगा उससे? वो खुद ही तो डूबा हुआ है, वो हमें क्या बताएगा? हम खुद ही दुखी है, हमारी खुद की स्थिति नहीं है, और हम दूसरों को क्या मदद करें? अगर किसकी मदद करनी है तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्थिति शक्तिशाली बनानी है। हाँ, उस स्थिति में हम चाहे 10 बार भी जाए और 1000 बार भी जाए, परंतु हम अलिप्त रहे, उसका प्रभाव हम पर ना हो जाए। सोचो एक डॉक्टर है और वो 10 मरीजों को देखता है, 10 मरीज और उनके एक एक मरीज के साथ 10-10 उसके रिश्तेदार, सब रो रहे हैं और डॉक्टर देखकर खुद ही रोना चालू कर दे, खुद ही दुखी हो जाए, तो कैसे होगा? और फिर उनके साथ बैठे और खुद दुखी हो जाए, खुद आंसू बहा रहा है, उसे तो कहीं ना कहीं निष्ठुर बनना पड़ेगा ना। परंतु उसकी ये निष्ठुरता, उसकी ये निर्दयता ही उनके लिए मदद है, नहीं तो वो मदद हो ही नहीं सकती। वो क्या मदद करेगा? वो खुद ही नीचे है, खुद ही स्थिति डाउन है, तो हम उनकी मदद कर पाएंगे? हाँ, उनकी मदद करना ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है, बहुत महान कर्म है, पर उस महान कर्म के लिए फिर हमें अपनी स्थिति भी उतनी महान बनानी है, नहीं तो वो कर्तव्य रह गया बाजू में, केवल शब्द रह जाएंगे और हम और वो एक ही तल, एक ही स्थिति दोनों की, बस चर्चाएं कर रहे घंटों बैठकर समस्याओं के बारे में, परंतु निकल कुछ नहीं रहा है। निकल भी रहा है तो वो लंबे समय तक नहीं टिक रहा है, थोड़े समय के लिए मदद होगी। हमें उनका कल्याण नहीं करना है, परम कल्याण करना है। यह अंतर है कल्याण करने में और परम कल्याण करने में। परम कल्याण अर्थात उनकी स्थिति को ऊपर कर देना। वो जो परिस्थितियां आई है वो शायद रहेगी वैसी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके कारण दूसरे हैं। हमें करना है परिस्थितियों के साथ कुछ नहीं करना है, हमें उनकी स्थिति के साथ कुछ करना है, और उनकी स्थिति के साथ कुछ करने के लिए हमें अपनी स्थिति के साथ कुछ करना होगा, तो ही ये वास्तविक मदद होगी। नहीं तो ऊपर का जो भी हम कर रहे हैं उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम एक झूठे दिलासे में कि हमने उनकी मदद की, हम गए सब किया, हम ये तो कहीं नहीं रहे कि नहीं जाओ, जाओ सब कुछ करो, सेवा भी करो। हमने इतने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा है हॉस्पिटल में अपने माँ बाप को लेकर आते, परंतु इतनी अनासक्त वृत्ति, ऐसे नहीं कि उनकी सेवा नहीं कर रहे, उनको लेके आते हैं, उनकी सारी जांच कराते हैं, उनको देखते हैं, एडमिट करना पड़ा तो एडमिट करते हैं, रात में रुकते हैं, अपना ज्ञान योग छोड़ते हैं, वहां रहने वाले जो मधुबन निवासी, परंतु इतना डिटैच भाव। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा सीरियस हो जाते, तब भी इतना डिटैच भाव, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। कभी कभी कोई शरीर भी छोड़ देता है तब भी डिटैच, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी नष्टो मोह स्थिति। ऐसा नहीं कि उनकी सेवा नहीं कर रहे, दिन रात वहां रहते उनकी सेवा करते। एक पेशेंट की सेवा करना बहुत बड़ी काम, बहुत बड़ी चीज है, आप करके देखो। सब कुछ छोड़ना पड़ता है अपना पर्सनल, उसका सब कुछ करना बहुत श्रम, बहुत कष्टदायक सेवा है वो। अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है। अभी अभी एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती थे, ज्ञान में चलता है पूरा ही परिवार, बेटा जो है वो वहां नीचे सेवा करता है। उनके पिताजी को इतनी सारी समस्या है, मानसिक बीमारियां हैं, रात भर चिल्लाना, ये करना वो करना, तो एक दिन वो बेटा जागता है, एक दिन माँ जागती है, रात उनकी ऐसी जाती है, एक दिन माँ की ड्यूटी है, एक दिन बेटे की ड्यूटी है। रात भर 15-15 मिनट में पेशाब में जाना है, 15-15 मिनट में ये करना है, वो करना है, कभी चिल्लाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी फाड़ के फेंक देंगे कपड़े, उनको संभालना पड़ता है। उठ तो सकते नहीं, चल तो सकते नहीं, सब कुछ वहीं करो, धुलाई सफाई सब सब वहीं करो उनका, वो सब करते। परंतु हमने उसमें भी देखा, वो जो भाई था कितना डिटैच था अंदर से, उसकी सूक्ष्म स्थिति बहुत अच्छी थी। वो जो एंग्जाइटी, क्या होगा क्या होगा, क्यों ठीक नहीं हो रही, या कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, एकदम शांत, कोई प्रश्न भी नहीं पूछने के लिए। नहीं तो कोई पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसके रिलेटिव को 1000 प्रश्न होते, क्या क्यों कैसे कब कैसे करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, चुपचाप। श्रेष्ठ स्थिति से ही पर सेवा हो सकती है। हम ये तो कह ही नहीं रहे कि वो सेवा नहीं कर रहा है, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, शायद दूसरा कोई करे भी ना जो कहता है कि मेरा ज्ञान योग और मेरी स्थिति अच्छी है, वो ना करे पर ये कर रहे। ऐसे एक उदाहरण दिया, ऐसे असंख्य उदाहरण है। हाँ, मोह नहीं, यहां हमें कर्तव्य करना है, ड्यूटी निभानी है, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ये भी आत्माएं हैं, इनका अपना पार्ट है, इनका अपना भाग्य है, इनकी अपनी बीमारी है, इनका अपना रोल है, ये हम भूल जाते हैं और ये इधर रह जाता है और वो संबंध जो है लौकिक का वही रह जाता है और उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम ना हो, प्रेम तो दिव्य गुणों में आता है, मोह विकारों में आता है। प्रेम की श्रेणी और मोह की श्रेणी अलग अलग है, परंतु वो प्रेम कब मोह बन जाता है पता नहीं चलता है। इसके लिए प्रेम प्रेम ही रहे, मोह ना रहे, और प्रेम की परिभाषा है डिटैचमेंट, और मोह जो है उसमें दुख होता है। क्या प्रेम में दुख हो सकता है? प्रेम का सागर वो है, प्रेम अभिव्यक्ति है, भगवान को दुख होता है, वो प्रेम का सागर है, वो सभी का उससे प्यार है, परंतु वो जो कुछ कह रहा है इतने सालों से कितने कर रहे हैं, बहुत कम, पर वो कभी दुखी होते देखा उसको? उसको कभी नाराज होते देखा? अभी मैं नहीं आऊंगा, बस हो गया, पिछली बार तुमको ये कहा था करने के लिए, किसी ने नहीं किया, मैं जा रहा हूं। अगर उसकी अपेक्षाएं होती, आशाएं होती, एक्सपेक्टेशंस होती, तो वो दुखी होता है। उसका प्रेम जैसा भगवान का प्रेम कितना निराला है, एकदम डिटैच है। क्या कोई ये कह सकता है कि भगवान प्यार नहीं करता? नहीं कह सकता, प्रेम तो उसका है, परंतु डिटैचमेंट है उस प्रेम में। तो सबसे पहली परीक्षा जो आती है वो है लौकिक से। कुछ तो हमने गिनाई, ऐसी बहुत सारी हो सकती है, परंतु हमें ये याद रखना है कि ये जो भी परीक्षा आएंगी, जो भी, इसको पेपर के रूप में लेना है और हमें पास होना है और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना है। और जो भी वहां की आत्माएं हैं उनको हमारा, हमें उनका परम कल्याण करना है, केवल कल्याण नहीं, अलौकिक मदद करनी है उनको, लौकिक मदद नहीं। तो सबसे पहला हुआ लौकिक, दूसरा पेपर, दूसरा पेपर है साथियों से, जो साथ में रहते हैं उनसे। वो क्या हो सकता है? संस्कारों की टक्कर, लेग पुलिंग, कोई आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचना, सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म ईर्ष्या, सूक्ष्म कंपैरिजन, सूक्ष्म तुलना। कभी दादियों को आपस में तुलना करते देखा? दादियां जो है, मतलब अंदर से भी देखो वो ईर्ष्या का भाव कहीं है ही नहीं, आश्चर्य लगता है बहुत बार कि कैसे बनाया है भगवान ने इनको। वो उसकी तारीफ करती है, वो उसकी तारीफ करती है, वो कहती आप, वो कहती आप, वो कहती आप बड़े, वो कहते आप बड़े। वो उसका उदाहरण देते, वो उसका उदाहरण देती, वो कहती दादी को एक बार ऐसे हुआ था, वो कहती है दादी को एक बार ऐसे हुआ था। कैसी अवस्थाएं हैं उनकी, वो अंश मात्र भी कहीं नहीं है। नहीं तो दो व्यक्ति अगर रहे, हमने मनोरिंद्रा दादी को देखा, कितना आदर सभी को, वो दादी को दूसरी दादियों के प्रति, कभी वो भाव ही नहीं है कि ये आगे गए और मैं पीछे हूं, ऐसा कुछ एक अंश मात्र भी नहीं। और एक दादी नहीं, सभी दादियां, भल कुछ दादियां उनसे उम्र में भी छोटी होंगी, उनकी भी ऐसा उनके प्रति रिस्पेक्ट, कितनी बड़ी बात है। क्यों ऐसा हुआ या हो रहा है? क्योंकि स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि सारा झगड़े जो होते हैं लोअर लेवल पे होते हैं, हायर लेवल पे कभी कोई झगड़े नहीं होते। जैसे भक्ति में उदाहरण देते हैं ना, राम की लड़ाई हो गई शंकर के साथ, जबरदस्त लड़ाई हो गई, तो राम के हनुमान और उसके वो गण, उनकी भी लड़ाई हो गई, परंतु बाद में राम और शंकर वो मिल गए, पर नीचे वाले जो तो लड़ते ही रहे, उनकी लड़ाई नहीं रुकी, वो लड़ते ही रहे। तो वास्तव में लड़ाइयां जो होती है लोअर स्टेजेस में होती रहती है। जैसे हमारी स्थिति ऊपर जाती है, ये जो सूक्ष्म तुलना करना, कंपैरिजन करना, ईर्ष्या, घृणा, लेग पुलिंग, कुछ दिन पहले मुरली में था ना, तुम किस चाल से चलते हो? केकड़े की चाल से। वो केकड़ा क्या करता है? ऐसा ही करता है, कोई आगे जाता है तो टांग खींचता है उसकी, क्रैप, और नीचे खींचता है उसको। सूरज भाई ने कभी अपनी क्लास में एक बार कहा था, यदि हमें किसी की सफलता से ईर्ष्या होती है तो वो सफलता, वो ईर्ष्या उस व्यक्ति से नहीं, उस सफलता से ईर्ष्या है, वो सफलता भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर अगर कोई सफल हो रहा है, कोई बहन हमारे आंखों के सामने आगे जा रही है, हम वही रह गए और हमें ईर्ष्या हो रही है, तो हमारे पास, हम अगर ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो ईर्ष्या, वो सफलता हमारे पास नहीं आएगी। सूक्ष्म सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस दिन भी कहा था, आकर्षण का नियम है ये। तो आपस में एक तो टकराव, आपस में वैचारिक मतभेद, तुलना, घृणा, नफरत का भाव, मनमुटाव, एक दूसरे से नहीं बनना, वो इधर से आया तो इधर मुंह, वो इधर से आया तो हमारा रास्ता इधर, ये सारा कुछ हो रहा है। इसका कारण है हमारा ज्ञान योग की कमी। जैसे ही ज्ञान योग की स्थिति ऊपर जाती है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, परंतु ये छोटी छोटी है पर है इतनी गहरी कि मन में कहीं ना कहीं इसने अपना स्थान ले लिया है, और बार बार उनके साथ रहते रहते उनके बहुत सारे अवगुणों का पता चल गया है। पहले नहीं था, पर रहते रहते बहुत सारी बातें पता चल गई है। कोई आता है कमरे में लाइट ही ऑन कर देता है, हमको सोना है, लाइट नहीं चाहिए। कोई आता है खिड़की और चालू कर देता है, कोई आता है फैन ही चालू करता है, कोई जा रहा है और हमारे पैर को ही पैर लगा देता है, कोई जाता है बाथरूम ही ठीक नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है। छोटी से छोटी बात, जिनके साथ हम रहते हैं उनकी बहुत सारी बातें हमको पता चलने लगती है, और जब पता चलने लगती है तो उनके प्रति फिर थोड़ा सा सम्मान कम हो जाता। हमने जिनको बहुत बड़ा योगी समझा था, हमने एक दिन देख लिया उनको नींद आ रही है योग में, बस खत्म, हमारी जो भावना थी उनके प्रति कम हो जाती है। हमने एक दिन देख लिया मुरली में उनको नींद आ रही है किसी को, अरे हमें क्या पता किसी के जीवन के बारे में, उनके शरीर की प्रकृति कैसी है, शरीर में कुछ बीमारी हो सकती है, कोई कमी हो सकती है, थकान हो सकती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिनका उनको भी पता नहीं, ये इतनी सारी बातें हो सकती है, उनका दिन कैसे बीता वो हमें क्या पता, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं रहती है दूसरों के बारे में, और हम कुछ ऊपर से देख लेते हैं परंतु रहता कुछ और है। एक व्यक्ति था जो सिपाही में नौकरी करता था, शादी हो गई और एक बच्ची का जन्म हुआ छोटी सी, और वो चला गया युद्ध में, कई साल तक युद्ध में था, वहां से खत लिखते रहा घर में पत्नी को, बच्ची तो बहुत छोटी थी, और कई सालों तक आया नहीं, बाद में खत भी आना बंद हो गया। पत्नी को, मतलब ये लोगों को लगा होगा शायद वो अब चला गया, और ऐसे कई 20-25 सालों के बाद वो आता है अपने घर में, तो देखता है उसकी पत्नी सोई है और पत्नी के साथ एक पुरुष सोया हुआ है, पुरुष के वस्त्र, वो दिखाई नहीं दे रहा है चेहरा, पर सोया है। तो उसे इतना क्रोध आ जाता है कि मैं आया नहीं, मतलब इसने समझ लिया कि मैं मर गया हूं, वो सीधा अपनी तलवार निकालता है और मारने को ही होता है, तो उसकी पत्नी देख लेती और रोकती, बोलती रुको क्या कर रहे हो, तो कहती ये कौन है, तो उसको, वो जो पुरुष होता है वो पुरुष नहीं होता है, उसकी बेटी होती है, वो कहती है कि तुम नहीं थे तो मैंने इस बेटी को ऐसे ही पाला जैसे कि एक बेटा है। तो अनुमान जो दिखता है वैसा बहुत सारी चीजें नहीं होती, और यदि उसने मार दिया होता तो कैसा पश्चाताप होता उसको, एक ही बेटी और उसको मार दिया, कैसा दुख से भर गया होता अविचार, क्षण मात्र का अविचार। इसके लिए हम किसी को कैसे जज कर सकते, जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। बाइबल में लिखा है तुम जज नहीं करो तो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा, यदि तुम करो तो तुमको भी किया जाएगा। फिर उसी तरह से जैसे हम दूसरों की गलतियां कितनी बारीकी से देखते हैं, एक एक अभी तक याद है किसने हमें क्या क्या कहा था, पर हमने कितनों को क्या क्या कह दिया। बहुत समय पहले मधुबन में या कहीं किसी कैंपस में कोई एक माता बहुत भावना से आई, बहुत भावना से, उसको थोड़े देर रहना था पर वो कुछ घंटे उसको ज्यादा रहना पड़ा। वहां आई थी 2 घंटे या 3 घंटे के लिए एकोमोडेशन, थोड़ा ज्यादा रहना पड़ा। किसी भाई ने कह दिया ये क्या धर्मशाला है क्या, अब बस उसका दिल टूट गया। अब उसने तो सहज कह दिया कि हजारों लोग आ रहे हैं और हजारों लोग जा रहे हैं, किसको क्या पता चलता है, किसको 2 घंटे के लिए रुकने के लिए बोला है और कोई 6 घंटा रुक रहा है। उसने जो बोलना था बोल दिया, पर हम जो बोलते हैं उसके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं, कहां कौन सा हृदय विदीर्ण हो जाए ये हम कहां देखते हैं। हमारा तो रूटीन है, हजारों लोग आ रहे हैं, हमने बोल दिया कुछ, तो अनुमान लगाना, एक दूसरे की कमी देख लेना, ये साथियों से बहुत सारे पेपर आते हैं। इसका भी जवाब एक ही है, स्थिति को ऊपर उठा लेना, ताकि ये जो संघर्ष है, क्योंकि ये अगर हो गया तो उस दिन का शाम का योग खत्म, दूसरे दिन का योग खत्म, मुश्किल है योग लगना। फिर तो झगड़ा अगर हो गया किसी के साथ फिर तो बहुत ही मुश्किल है, कुछ दिन तक योग ही खत्म, स्थिति खत्म। कौन किसको माफी मांगेगा, वो कहता है कि वो माफी मांगे, वो सोचता है कि ये माफी मांगे, ना वो बात करता है ना वो बात करता है, दोनों अलग अलग, एक इधर एक इधर। तो ये दूसरा पेपर। तीसरा पेपर बड़ों से, बड़ों से कौन सा पेपर आ सकता है, ये आते ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आध्यात्मिक चाहे लौकिक, जहां पर भी हम काम करेंगे वहां कोई ना कोई बड़े रहते ही है, और उनके द्वारा कुछ ना कुछ पेपर आएंगे, और वो पेपर बहुत सूक्ष्म होंगे जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं की जा सकती। कभी कभी अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है, पर आने तो है। कौन कौन से? वैचारिक मतभेद, सबसे पहला तो यही है, हम ये सोचते हैं वो ये सोचते हैं, बहुत विचारों की टकराव, विचारों में बहुत भेद है। हो सकता है ये पुरानी सोच है हमारी नई सोच है, ये हो सकता है उनका सोचने का ढंग कुछ अलग तरीके का है, उनका जो जमाना था वो दूसरा है, अभी जमाना बदल गया और हम सोचते ये चीज ऐसी नहीं ऐसी करनी चाहिए, वो सब सेवा की ही बातें हो सकती है। इसमें उत्पन्न हुआ वो सूक्ष्म संघर्ष एक, दूसरा कम्युनिकेशन गैप हो सकती है दोनों के बीच में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन गैप, हम मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच, गलतफहमी हो सकती है कोई ना कोई, या किसी और कोई बीच में आया और किसी ने गड़बड़ कर दी, हम और उनके बीच में कोई दूसरा आ गया और उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, वो गैप हो गया एक, और हमने भी बात नहीं की और उन्होंने भी बात नहीं की, हमने भी कहा नहीं और वो उन्होंने भी पूछा नहीं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और अलग हो गए एक रीति से, रहते वही हैं पर भावनाओं से मन से बहुत दूर चले गए, बड़ों से। हाँ, हमको लगता है कि ये किसी एक को इम्पोर्टेंस दे रहे, हमको थोड़ा कम दे रहे, कम मान रहे, ये भी पार्शियलिटी। हमको लगता है ये पार्शियलिटी, ये सेवा के लिए हमें भेजना चाहिए, इसी को क्यों भेजते हमेशा। थोड़ा सा वहां फिर ईर्ष्या जैसा भाव भी तैयार हो जाता है, जैसे रामायण में दिखाया है, श्री राम और लक्ष्मण जा रहे, बीच में सामने से हनुमान आता है, पहली बार मुलाकात। राम जी लक्ष्मण को कहता है, ये जो हनुमान है ना, मुझे तुमसे दुगुना प्यारा है। लक्ष्मण 14 साल से उनके साथ है, सब कुछ छोड़कर आया है, और ये हनुमान कौन है ये भी नहीं पता, अभी आया है। और उनको क्या कह रहे हैं, ये तुमसे मुझसे दुगुना प्यारा है। तो उसको बहुत ईर्ष्या होती है अंदर से। परंतु यदि किसी को कोई प्यारा है तो उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे हनुमान का उदाहरण दिया, तो हनुमान कौन था, उसका परम भक्त था, उनका तो आपस में शायद पहले से ही वो क्या कहेंगे उसको, आंतरिक संबंध पहले से ही बना हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते, और ये भी हो सकता है वो हमसे अधिक योग्य है, वो व्यक्ति दूसरा होता, हम थोड़े कम योग्य है। हर एक अपनी योग्यताओं के अनुसार ही पाता है जो पाता है। हम ये कैसे कह सकते कि ये हमसे, हमें हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये पहला नियम है। पहला नियम कौन सा है, लिख लो इस नियम को, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस जो है वो हमेशा ही राइट रहता है। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो है, इफ बॉस इज नॉट राइट, यदि बॉस राइट नहीं है, फॉलो रूल नंबर वन। रूल नंबर वन है, बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरा नियम है, अगर बॉस राइट नहीं है तो पहले नियम फॉलो करो, ये दूसरा नियम है। कोई एक किताब हम पढ़ रहे थे, मोबाइल शायद उधर रह गया, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी कि बॉस के साथ कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या नहीं कहना चाहिए। एक तो ये नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं लगता ऐसा, ये बातें बॉस के सामने ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए, मैंने बताया तो था पहले। ये ऐसे वाक्य लिखे हैं 4-5 कि जो नहीं कहने चाहिए। मैंने मेल तो किया था आपको, ये नहीं कहना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था ये नहीं कहना चाहिए। मेरी भी तो मानते जाओ, ये नहीं कहना चाहिए। ये ऐसी वाक्य लिखे थे बहुत सारे जो कि नहीं कहने। बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, हाउ टू डील विथ टफ बॉस। कंपनियों में यह समस्या तो बहुत है, कॉर्पोरेट कंपनीज में बहुत समस्या है। ये बॉस के टाइप्स लिखे हुए, कैसे होते हैं बॉस, अलग अलग प्रकार के। और हमारा ये स्वभाव होता है बॉस की थोड़ी निंदा करना, अगर दूसरा साथ में मिल गया वो भी कर रहा है तो हम भी उसके साथ लग जाते हैं, शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा किया था और हमारे साथ भी किया है। परंतु एक बात है कि हम जिसकी भी निंदा करते हैं वो एक ना एक दिन हमारी बोली हुई वाणी उस तक पहुंचती है। एक ऑफिस में दिखाया है कि एक व्यक्ति रहता है जिसे अंग्रेजी बहुत ज्यादा आती है, अभी अभी अपॉइंट हुआ है, उसके साथ और 5-6 लोग भी आए हैं। तो उसकी एक आदत होती है कि जब भी बॉस के केबिन में जाता है, देखता है बॉस बहुत ही गलतियां करता है भाषा में एक, और जो भी बॉस लेटर लिख के देता है उसमें बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती है। तो वो हमेशा अपने मित्रों के साथ बैठ के बात करता है, ये बॉस का दिखाया ना, इसमें तो गलतियां होनी है, मतलब हमेशा ऐसी इस तरह की बातें वो करते रहता है जब भी। और बॉस को एक दिन पता चल जाता है कि ये मेरी बॉस इस तरह से खिंचाई करते रहता है, भले वो उसके सामने कभी नहीं किए क्योंकि तो बॉस है, पर आपस में जब मिलते हैं कैंटीन में यहाँ वहां, तो इस तरह की उसकी बातें चलती रहती थी कि ये लेटर लिखा उसमें 4 गलतियां निकली, उसमें भी ऐसा लिख दिया, वैसे उसमें वैसा लिख दिया। और जब भाषण भी देते थे बॉस, तो वो पेन लेके बैठता था, कहाँ कहाँ गलती थी, ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, ये वर्ड ठीक नहीं बोला, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, या हैज नहीं हैव चाहिए था, इस तरह से। तो बॉस को तो पता चल जाता है ये बात, हम जिसकी ग्लानी करते हैं उसको एक ना एक दिन वो बात पहुंच ही जाती है, किसी के द्वारा जाएगी पता नहीं, कोई भी हो सकता है, हमारे शायद कितने भी विश्वस्त है जिनके सामने हमने वो बातें कही, फिर भी पहुंच जाएगी। तो 6 मास के बाद इंक्रीमेंट का समय आता है प्रमोशन का, तो उसके साथ जो 7-8 लोग जो ज्वाइन किए थे सबको प्रमोशन हो जाता है, उसका नहीं होता है खाली। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कैसे मेरा प्रमोशन नहीं किया, जबकि मैं इतना योग्य हूं और मेरे साथ ज्वाइन करने वाले सबका प्रमोशन हो गया, सबकी सैलरी बढ़ गई, मेरी क्यों नहीं बढ़ी। तो वो जाता है बॉस के कैबिन में और कहता है ऐसे क्या करूं, आपने ऐसा क्यों किया। तो बॉस कहते वो क्या करूं, मेरी जो इंग्लिश है ना इतनी पुअर है, मैं आपके लिए लेटर ही नहीं बना पाया। अब क्या करूं बताओ। और क्या हो सकता है बड़ों से। उनके प्रति हमारे मन में एक दृष्टिकोण है कि ये योगी है, इन्हें सबकी पालना करनी चाहिए, पहले से ही इन्हें समझ है, उसके बाद भी हम कभी कभी देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ कम समझदारी की के कर्तव्य करते हुए, तो मन में संकट चलते हैं। ये भी सोचते हैं कि हमने गलती चलो की, पर इनको फिर भी पालना करनी चाहिए, इनको हमें माफ करना चाहिए, ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। हमने अगर गलती भी की तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इन्हें ये सब समा लेना चाहिए, इनमें आध्यात्मिक पावर ज्यादा है, वो क्यों नहीं है, इस वजह से भी हम दुखी होते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है उनसे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन ही हमारे दुख का कारण है। वो क्या करे, आप हम या फिर ये बोल रहे हैं कि वो भी एक आत्मा है, पुरुषार्थ की डगर में वो एक राही है, हम ये बोल रहे हैं, वो भी उसी मार्ग पर है जिस मार्ग पर हम हैं। कितने समय से कौन है और क्या है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने कितना पुरुषार्थ किया है, आंतरिक पुरुषार्थ। हमारी सुबह की जो क्लास है वहां पर कोई भी आते नए नए आते हैं तो हम उनको बिठाते और अनुभव सुनाने के लिए कहते हैं, तो वो चालू करते 10 साल से ज्ञान में हो, तो उधर प्रश्न पूछा जाता ज्ञान आपने कब से, तो कितने साल से कौन है इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ज्ञान हम में कब से चल रहा है। तो ये भी तो एक एक्सपेक्टेशन थी, हम भूल रहे हैं कर्म के सिद्धांत को, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है उनसे, बहुत ज्यादा है, वो सबकी पालना करे, सबके अवगुणों को अपने अंदर समा दे, हम अगर गलती भी करें तो भी हमें माफी मिल जाए, हमारी तरफ ध्यान दे, अटेंशन दे, केयर करे, हमारी पालना करे, हर रीति से हमको देखे, हम भी तो इतने बड़े बड़े त्याग करके आए हैं, यहाँ हमारा है ही कौन, अगर यही हमारे तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कौन हमें हमारे तरफ ध्यान देगा, हमारा और है ही कौन दुनिया में। ये सारी वास्तव में देखा जाए ये सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन है, परंतु हम अकेले हैं इस मार्ग में, ये हम क्यों भूल रहे हैं। एकांगी पगडंडी है जहां अकेला ही चलना है, कोई भी साथी नहीं है, ना लौकिक ना अलौकिक, अगर बनाया तो वही बंधन बन जाएगा। नेक्स्ट, बड़े हो गया, उसके बाद अगला पॉइंट 4th, बीमारी, शरीर की बीमारी। जब शरीर की बीमारी आ जाती है बहुत मुश्किल हो जाता है पुरुषार्थ। बीमारी है पर कहे किससे, बीमारी है परंतु सेवाएं करनी है, बीमारी है परंतु वो रूटीन चालू रहेगा, बीमारी है कहां भी एक दो बार पर कुछ खास रिस्पांस ऊपर से आया नहीं। एक दो बार दिखाया भी, परंतु कुछ खास फायदा हुआ नहीं। बीमारी अभी भी चालू है, और कुछ कुछ बीमारी ऐसी है कि जो रिपोर्ट कराओ तो सब नॉर्मल। अब बताएं किसको? कोई कहते ही ऐसी करती रहती है, नाटक है, कुछ भी नहीं। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरा दर्द न जाने खोए। शरीर की बीमारी। अच्छा चलो, पहले तो वो बीमारी है, जैसे कोई ऑपरेशन कराना पड़ा उसमें, तो चलो वो दूसरी बात है। परंतु शारीरिक वास्तव में बीमारी आ गई और जिसका इलाज भी हुआ अच्छे से, परंतु वो जो पीरियड है वो पूरा, वो दवाइयां देना, अगर ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन कराना, हॉस्पिटल में एडमिट रहना, बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार इन्वेस्टिगेशन कराना, इधर से उधर घूमना, ये सारा जो है इसमें कहीं ना कहीं थकान हो जाती है, एक आध्यात्मिक थकान। सारी ये सारा कुछ है शरीर का। चलो दवाइयां ले रहे, दवाइयों के साइड इफेक्ट कभी कुछ, उससे कुछ नया नया हो रहा है, कोई कोई रिएक्शन हो रही है दवाइयां, फिर उसके बाद में उनका खर्चा, दवाइयों का खर्चा। चलो यहां बाहर है तो सब करना पड़ता है, मधुबन में रहा तो चलो दूसरा है थोड़ा, परंतु दवाई जो बीमारी जो है मनोबल को थोड़ा कम कर देती है। पुरुषार्थ का उमंग जो है, उत्साह जो है, थोड़ा सा डाउन कर देती है। हम चाहते बहुत कुछ करना है, और कुछ कुछ तो ऐसे देखे हमने बहने, इतना उमंग उत्साह, इतना उमंग उत्साह, बीमारी है सब कुछ है, फिर भी सेवा नहीं छोड़ती, दिन रात करती रहती है, ध्यान भी नहीं देती अपनी तरफ, शरीर का भी ध्यान नहीं उनको, दिन रात लगी हुई है। हजारों बहने ऐसी देखी हमने जिनकी ऐसी स्थिति है, परंतु कुछ और दूसरी है कि जो बीमारी से घिरी हुई रहती है और दिन रात बीमारी का ही चिंतन करती रहती है, दिन रात कोई भी आएगा उसको अपनी बीमारी बताएगी कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पता है उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ वो डॉक्टर को बताए वो दूसरी बात है, परंतु चर्चा ही बीमारी होगी है, बस दिन रात बीमारी की ही चर्चा, कितने संकल्प चल रहे हैं, कितना उसके बारे में सोच चल रहा है, उतना ही सोच यदि पुरुषार्थ के बारे में चले तो कहां से कहां पहुंच जाए आत्मा। थोड़ा और दूसरा है, थोड़ी भी बीमारी हुई तो उसका बहुत बड़ा करके दिखाना, थोड़ा हुआ पर दिखाना ऐसा कि क्या हुआ और क्या नहीं। बहुत ज्यादा देहभान में लाने वाली चीजें है सारी। हाँ वो दूसरी बात है कि वास्तव में कोई बीमारी है उसका हमें इलाज कराना चाहिए, और जल्दी कराना चाहिए, और जल्दी स्वयं को स्वस्थ रखना चाहिए। उसके लिए नियमित हमारा भोजन, नियमित व्यायाम, नियमित एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास, वॉकिंग के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। फिर जब बिस्तर पे पकड़ लेते हैं बिस्तर, तो एक महीना तो ऐसा ही चले जाते हैं बिस्तर पर पकड़। फिर ऐसा कुछ करे कि बीमारी आए ही नहीं हमारे पास, कोई भी बीमारी ना आए, इतना हमारी दिनचर्या एक्यूरेट हो। हमने देखा जयंती बहन का वजन उतना के उतना ही है, 0.2, इतना सा भी इधर उधर नहीं होता है, इतनी एक्यूरेट उनकी दिनचर्या, इतना उनका भोजन जितना है बस उतना ही रहेगा, उतना ही भोजन, एक्सरसाइज, चाहे किधर भी हो, क्योंकि उनको पता है मुझे यहां जहां घूमना पड़ता है सब जगह। अगर हर जगह वो जाए और हर जगह वहां वहां का सब कुछ लेते रहे या उस तरह अपने आप को ये करे तो सेहत खराब हो जाएगी। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने सेहत का रखना है, और ध्यान में ऐसी हमारी दिनचर्या हो कि जिसमें बीमारी आए ही ना, टच ही ना करें हमको, उसमें खान पान जो भी है, एक्सरसाइज, प्राणायाम अगर करते हैं तो प्राणायाम, योगासन करते हैं तो योगासन, सब कुछ उसमें अच्छे से इंक्लूड हो। क्योंकि देखो हमें अपने आप को ठीक रखना है। अगर हम शरीर बीमार पड़ गया ना तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस पड़े रहो। एक बीमार व्यक्ति की व्यथा सोचो, फ्रैक्चर हो जाए, पैर लटका के पड़े रहो एक मास, अभी तक इतनी सेवा 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 सेवा, और अचानक स्टॉप, कुछ नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते। फिर एक दूसरा विषय है, उन बीमारियों के लिए भी हम तैयार भी रहे, पर अचानक अगर कोई आ जाती है, उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास हॉस्पिटल में एक बहन है, हार्डली 30-35 साल के बीच की, हॉस्पिटल में आते रहते हैं तो दिल्ली साइड के। एक बार स्कूटी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया कुछ सालों पहले, इतनी जबरदस्त चोट लगी ब्रेन को कि हाथ और पैर दोनों पैरालिसिस, बस ऐसे रहती। उनकी लौकिक बहन उन्हें देखती है, कितनी बार हॉस्पिटल में 2-3 मास रहती है, कभी शांतिवन रहती है, कभी कहां, कर कुछ भी नहीं सकती। पर वो कोई बचपन से वैसे नहीं है, एक्सीडेंट के बाद हुआ, पूरे नॉर्मल, और अभी बस लेटे रहो, उसको मतलब हाथ भी नहीं ला सकते, यहां से इधर भी नहीं कर सकते, यहां से। उसकी जो छोटी बहन है लौकिक, वो उसकी सारी देखभाल करती है, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है। तो क्या हम तैयार हैं? हमें कुछ भी हो सकता है, कौन सा हिसाब किताब कहां निकल के आ जाए। एक तो बीमारी होने ना देना, एक दूसरा अगर हो जाए तो तैयारी, उसमें फिर नथिंग न्यू और ड्रामा का पार्ट पक्का। और तीसरा, बीमारी के समय भी कैसी सेवाएं करें, ये एक अपने आप में एक विषय है। हमने इस पर एक बार इस पर बहुत लंबी चर्चा की थी, जब बीमार पड़ जाए तो क्या क्या सेवाएं करें, बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या क्या करें, किन किन की सेवा करें, उन हॉस्पिटल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, शुभ संकल्प से सेवा, उस बीमारी से विश्वभर में जो भी आत्माएं होंगी उनकी मनसा सेवा, अलग 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 सेवाएं कर सकते हैं बीमार पड़ने के बाद। ऐसा नहीं कि अब तक सेवा कर रहे थे, अचानक फ्रैक्चर हो गया, अभी एक महीना हिलना नहीं है तो दुखी हो जाओ, अभी मैं सेवा कैसे करूंगा, संकल्प चले, ठीक है, जब तक ठीक थे चलते वो सेवा किए, अभी स्टॉप, अभी फ्रैक्चर हो गया, अभी बैठो चुपचाप और मन सा सेवा करो। ये भी तैयारी चाहिए मन की, ये बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा पेपर। तो पर एक प्रश्न मेरा आपसे है कि वो जो उसकी बहन सेवा कर रही है, और ये जो बहन है जो पहले अच्छी थी, क्या उसने कभी ये सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा? क्या उसकी ये कामना थी? कभी उसने स्वप्न में भी सोचा था कि मैं अगर बीमार पड़ी या कुछ हुआ तो कोई मेरी सेवा की, ये उसने एक्सपेक्टेशन थी? बिल्कुल नहीं थी। वो दूसरी बात है कि उसकी बहन सेवा कर रही है उसकी, पर क्या उसने चाहा था वो? नहीं। अब दूसरी बात, किसके साथ क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हम अभी से तो कह नहीं सकते, हाँ ये बहन है ये मेरी सेवा करेगी, क्या इसकी कोई गारंटी लिख दे सकता है? हम बीमार पड़ गए और वो बहन छोड़ के चली गई तो उसने वादा ही नहीं निभाया। एक है समर्पित समर्पण, अर्थात अनिश्चिंतता, कोई गारंटी नहीं किसी बात की, एक बाप के अतिरिक्त। वो देखे तो देखे, नहीं देखे तो नहीं देखे, उसके ऊपर है, उसने छोड़ दिया तो छोड़ो, चलो ठीक है, जाय विधि राखे राम, जाय विधि रही है, यही जीवन है। वो जो होता है ना नीचे पानी में, घास होती है पानी के नीचे उगती है, इधर से पानी आए तो इधर, उधर से पानी आए तो उधर, उसकी रजा में राती, यही जीवन है। अनिश्चिंतता, अनसर्टेनिटी, सरेंडर इक्वल टू अनसर्टेनिटी, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। यही मार्ग है संन्यास। वो वाली बातें आ रही है फिर, क्या उस लिए बाबा के पास आए थे? बाबा हम आपके पास आ रहे हैं, हम अगर बीमार पड़े तो कोई सेवादारी नहीं देना। हाँ कुछ हेल्प ही नहीं मिल रही तो रहो वैसे जैसे हो, उसकी इच्छा उसकी जिम्मेवारी है। योगक्षेमम वहम में हम, वो अगर नहीं रखना चाहता तो ठीक है। एक भाई था, इतनी सेवा की इतनी सेवा की, सारे जीवन भर सेवा की, भाग दौड़ की, योग ज्ञान योग के लिए समय नहीं था। जब बीमार पड़ा कुछ दिन सेवाधारी आया, सेवाधारी छोड़कर चला गया, समर्पित भाई। और फिर संकल्प उसके हो रहे हैं, क्या सोच रहा था वो हमारी आंखों के सामने हमने देखा है उसे, मैंने बाबा को अपना जीवन दिया और एक सेवाधारी भी नहीं देखने के लिए। बाबा इससे अच्छा मैं अगर शादी कर लिया होता तो आज पत्नी होती बच्चे होते, ये अवस्था थी उसकी। बहुत सारे प्रश्न है, अगर कर भी लिया होता तो आजकल कोई गारंटी है कि बच्चे सेवा करेंगे? अनाथ वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं दुनिया में। माँ बच्चे माँ बाप को छोड़ के आ जाते, वापस कभी देखने नहीं आते। हमारे पास बीच में एक पेशेंट एडमिट थी, 80% बर्न, बहू घर की, सास ससुर पति छोड़ के आए, रख के गए, बाद में देखने भी नहीं आए, नाम के झूठा बता के चले गए और वो वहीं मरी 4-5 मास के बाद। वो बर्न केस, जिसकी हमने कितने एंटीबायोटिक्स और क्या क्या दिया उसको, 80% बर्न, इमेजिन करो, पूरा चेहरा काला हो गया था, पूरा जल चुकी थी पर जिंदा थी। और बर्न, इतना बर्न तो पहले बचता ही नहीं, पहली बात। वो बची इसलिए, एक कारण ये भी था क्योंकि मिलने वाले कोई थे नहीं तो इन्फेक्शन हुआ नहीं, क्रॉस इन्फेक्शन, ये भी एक दूसरा एक सूक्ष्म कारण था उसका। तो वो तो छोड़ के चले जाते हैं, लेप्रसी वार्ड जाके देखो, कुष्ठ रोग, जितने लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है घर वाले छोड़ देते, कभी देखने नहीं आते, कभी फोन नहीं करते। वोल्टेज होम देख के आओ, छोड़ के जाते एक ही शहर में है पर देखने नहीं आते, किसका क्या भरोसा है इधर। परंतु ये जीवन अर्थात अनिश्चिंतता, जो उसकी इच्छा हो जाओ। जैसे एक भक्त था, उसको इतना निश्चय था राम पर कि राम की जैसी, राम की इच्छा, राम की इच्छा, हर चीज में राम की इच्छा, कपड़े बुनता था बेचता था राम की इच्छा, राम की इच्छा से इतने रुपए में कपड़ा खरीदा, राम की इच्छा से इतने रुपए में वो बेचा। एक दिन ऐसे घर में बैठा रहता है वरांदे में, और वहां डाकुओं की टोली आती है, उनको लगता है ये अच्छा आदमी बैठा है भोला वाला, इसको पकड़ के ले जाए, जो सोना हम लूटेंगे इसके सिर पर लादेंगे और ले चलेंगे, काम आएगा कूली के रूप में। उसको पकड़ के लेके जाते हैं, वो दरवाजा तोड़ते हैं, तिजोरी तोड़ते हैं, और वो जैसे ही लेने जाते हैं पुलिस आ जाती है और ये सारे के सारे डाकू भाग जाते हैं। पुलिस आती है, इसको पकड़ लेती है, इसको पकड़ लेती है, हवालात में लेके जाती है, रात भर जेल में रखते, दूसरे दिन जज के सामने पेश करते हैं। जज पूछता है, बोलो भाई क्या है, कुछ सफाई में कहना है तो कहो। वो कहता है, सफाई में मैं क्या कहूं, राम की इच्छा से मैं दुकान में बैठा था, दुकान का काम पूरा हुआ तो राम की इच्छा से मैं घर में आया, घर में आया और राम की इच्छा से मैं वरांदे में बैठा था, उसी समय फिर राम की ही इच्छा से डाकुओं की टोली वहां आ गई और राम की ही इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ कर लेके गए, और राम की इच्छा से वो डाका डाला उन्होंने, सोना भी लूटने ही वाले थे कि राम की इच्छा से पुलिस वहां आ गई, और राम की इच्छा से ये डाकू वहां से भाग गए, और राम की इच्छा से ये पुलिस मुझे पकड़ के लेके आई, राम की इच्छा से रात भर हवालात में रहा, और हुजूर राम की इच्छा से अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब बोलो क्या करना है। तो उसके गांव वाले भी लोग वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही भोरा वाला व्यक्ति है, ये कैसे ये चोरी कर सकता है, इसे छोड़ दो। तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो जब जाते रहता है वापस अपने गांव वालों के साथ, वो कहता है, देखा राम की इच्छा से ही मुझे छोड़ दिया गया है। ये है समर्पण भाव, कोई सोई जो राम लगी रखा, जो उसने लिख के रखा है ना, अगर उसने यही लिख के रखा है, बीमारी लिख के रखी है स्वीकार कर लो उस बीमारी को, यही प्रेम है। ये भक्ति में उसकी इच्छा, ज्ञान में ड्रामा अनुसार नियति, एक ही चीज है। नेक्स्ट किसको बताया? हाँ, हमारा काम है हमें बताना तो है, ऐसा नहीं कि छुपा के रखना है। बताया पर मदद नहीं आई तो क्या करें? यू क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें तो हमें अपने साथ ही करनी है सबसे पहले, जो कही कि बीमारी आए ही नहीं, परंतु बीमारी आ गई है, हम देखिए कि इस बीमारी का क्या हल है। दूसरा, उस बीमारी के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाए कहीं से भी, और वो बीमारी का खुद ही कारण ढूंढे, खुद ही खुद का डॉक्टर बनने की कोशिश करना है। क्या कारण है? मार्ग खुद निकालना पड़ेगा, किसी क्लास में कोई मार्ग नहीं। हमें अपना मार्ग, अपने जीवन का मार्ग, उत्तर इधर है कहीं ना कहीं अंदर छिपा हुआ, निकलेगा। इसका उत्तर इस सार्वजनिक क्लास में तो नहीं दिया जा सकता है, परंतु आप ढूंढो, सीक एंड इट शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। खटखटाओ तो खुलेगा, ढूंढो तो मिलेगा, मांगो तो पाओगे, खुद ही ढूंढो मिल जाएगा। नेक्स्ट कितने हो गए? चार। पांचवा, स्टूडेंट से परीक्षा। सात तारीख अग्नि परीक्षाओं में स्टूडेंट से क्या परीक्षा आएगी? स्टूडेंट से मिसअंडरस्टैंडिंग, एक और किसका? हमारा है उनका, उस स्टूडेंट का, दोनों का ही कहो। और हाय समझते हैं, वही बड़ा समझते हैं अपने आप को, ये हमको कौन है सिखाने वाली, हमें तो ज्यादा समझ में आता है, हमारे पास मैच्योरिटी ज्यादा है, हम कमाने वाले हैं, ये भी रहता है कहीं होगा। बाबा मुरलियों में भी आता है ना, बाबा आपको कोई चीज की जरूरत हो तो हमको बताना, हम आपको दे देंगे, मुरली में आता है ये बात। बाबा कहते मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बाप तो आया है देने के लिए, ये भी अहंकार। तब भी थे ऐसे लोग, अब भी है, ऐसे नहीं कि तब नहीं थे, तब भी थे आज भी है। और स्टूडेंट से माया, थोड़ी गहरी माया बताओ, परीक्षा बताओ स्टूडेंट से, ये छोटी मोटी नहीं। स्टूडेंट आना ही बंद अच्छा वो दूसरी बात है, ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम परीक्षा की बात कर रहे हैं, आ सकती है वो, उसमें एक बात आपने बोल दी स्टूडेंट आएगा नहीं, ये भी एक है, ये भी एक परीक्षा है, आना ही बंद कर दिया अभी तक आ रहे थे एक साथ ही बंद नहीं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, वो तो अच्छी बात है। हाँ, कौन सी आ सकती है उसकी चर्चा चालू है। हाँ, विरोध विद्रोह एंटी बन सकती, जिनकी जिनकी हमने इतनी सेवा की, जिनकी पालना की, मधुबन लेके गए, बाबा से मिलाया, मधुबन घुमाया, एक दिन वही अब हमारे खिलाफ खड़े, वही हमारे बड़ों से जाके हमारी कंप्लेन कर रहे, ये बहन ठीक नहीं है, जबकि हमने ही उनकी सारी पालना की। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस जमाने में, हर परीक्षा के लिए तैयार चाहिए। जिन कुमारों को हमने बहुत अपने सच्ची भावना से जिनकी पालना की, आज वही विरोधी हो गए। किसी ने हमको बहुत अच्छी कोई चीज दी सेंटर के लिए, और कुछ समय के बाद वो कहता है मुझे वो वापस दे दो, युक्ति से टेप रिकॉर्ड दिया था, कहता है कि मुझे दो दिन के लिए चाहिए, लेके गया तो वापस लाया ही नहीं, वैसे उस दिया था यज्ञ में दिया और फिर वापस लेके गए। ये भी माया हो सकती है, इसमें थोड़ा उदास भी हो सकते है। कोई अचानक छोड़ दे क्लास में आना बिना बताए, अभी तक आ रहा था बिना बताए, एकदम कॉन्टेक्ट खत्म, पुल क्या हुआ कैसे हुआ हम सोचते ही रहे पर पता ही नहीं चल रहा है, बाद में कभी दिखता भी है, ओम शांति कहता है बस और चले जाता है, आगे बात नहीं करता है। कुछ तो हुआ होगा पर वो बताने को तैयार नहीं, मिलता है तो बस हेलो हाय ओम शांति बस। ये भी एक स्टूडेंट की तरफ से हो सकता है, विरोध हो सकता है, छोड़ के जा सकते हैं, एंटी हो जा सकते हैं, कभी निंदा करते हैं बैठकर, रूठ जाते हैं। मुरलियों में भी आता है, अरे बहन ने कुछ किया, मैंने थोड़ी ना कुछ किया। बाबा कहते हैं वो बहन से रूठे हो, मुझसे क्यों रूठते हो, मैंने क्या किया तुम्हारा। इंटरफियर करते हैं कारोबार में, अपने मन से बिना पूछे प्रोग्राम बना देते हैं, बिना पूछे कहीं कहीं सेंटर खोल लेते हैं, ऑफिस में कमेटी बना लेते, उनका अपना एक अध्यक्ष बना लेते, बहुत सारा कुछ करते थे और इधर पता ही नहीं। और वो नहीं चलते कहने अनुसार, कहा कुछ और करते अपने मन से। वो हम हमारे का, उनके कहने अनुसार हम चले, ये भी एक पॉइंट है। और हमने जो, और वो भी एक दूसरा भी पॉइंट है कि हमने उनसे कुछ कहा वो करे ही ना, कुछ और ही कर दे, और वो चाहते कि वो जैसे कहें हम वैसा करें। हाँ हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमने कुछ यहाँ दिया था। और कभी अपना अहंकार, मतलब सबको नीचा समझते और ये जताते हैं कि बस ये लोग मेरे तरफ ज्यादा ध्यान दें, मैंने इतना दिया है ना, मेरी खातिरी होनी चाहिए, मुझे वीआईपी सीट, सब कुछ मेरी वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिलती तो उदास, अगर खड़े रखा वेटिंग उदास। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन और डरा के रखते हैं एकदम। ये भी देखा है हमने, डरा के रखते स्टूडेंट से माया। नेक्स्ट, वो सॉल्यूशन इधर है, सोचो तो पाओगे, सोचो तो पाओगे। ये तो हम खोल के रख रहे विषय को, सॉल्यूशन किसी व्यक्ति के पास नहीं है, और सॉल्यूशन सारा आपको पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं। आप विश्व को सिखाने वाले हो, ये समस्या तो संसार वाले आपके पास लेके आते हैं, हम तो क्या बताएं, ये पता है आपको। हाँ, दूसरे भड़का रहे, अब क्या करें। रावण ने पूरे आसमान में बाण ही बाण बिछा के रख दिए, राम ने एक बाण मारा और खत्म। असत्य के बादल सत्य के सूर्य को ढक नहीं सकते, धैर्य चाहिए, धैर्य और सत्य की शक्ति पर विश्वास, बस दो ही चीज। कितना भी चलने दो सत्य में जयते, जिसको कोई कितना भी खराब करे, जिसको निश्चय है वो कभी नहीं जाएगा। अगर वो जा रहा है तो वास्तव में उसको निश्चय ही नहीं है। यदि हमको कोई आके कहे कि ये सब फालतू है तो हम छोड़ेंगे क्या? हम तो नहीं छोड़ते। ब्रह्मा भी आकर कह दे तो भी पीछे हटेंगे? ब्रह्मा आके कह दे कि मेरे तन में शिव बाबा आता ही नहीं, तो हम कहेंगे तुम्हारे ही तन में आता है। ये निश्चय, अगर वो छोड़ के जा रहे तो जाने दो, अच्छा ही है जाने, छाटता है ना, योगी योगी रुक जाएंगे, बाकी तो छट के निकल जाएंगे यहां से बाहर। वो कच्चे थे, पत्तियां थी, वो पत्ते चढ़ गए बस। ये तो सब होगा, विरोध होगा। बाबा के समय कितने लोग छोड़ के चले गए, बाबा ने चिंता की क्या? जाए तो जाए, जिसको आना है आए, उसका भाग्य ही वहां तक था, ये दूसरी बात है सूक्ष्म। चलो किसी ने भड़काने वाला निमित्त बन गया है, पर हम क्यों भड़क रहे? उसको भड़का रहा है भड़काने दो, पर वो जो जा रहा है उसके पास बुद्धि नहीं है क्या समझने के लिए, सोचने के लिए? हम क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं? हमें क्यों दया रहम आ रही है उसके ऊपर, जिसको भड़काया जा रहा है उसके ऊपर? उसकी अपनी बुद्धि है, हो सकता है उसका निश्चय ही नहीं था और उसने तुरंत उन बातों को स्वीकार कर दिया। क्या उसके पास बुद्धि नहीं है कि जाकर उन बातों को कन्फर्म करे? हम क्यों इतना ये हो रहे, चिंतित हो रहे उसके लिए? जाने दो, कम होने दो, कुछ नहीं। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, दरवाजे खुले हैं। हम किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, कोई हमारा स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट से मोह नहीं रखो, आज हमारे कल कहीं और के, आज इस डगर कल उस डगर, आए तो आए जाए तो जाए, हमें क्या। हमारा लक्ष्य है उनकी पालना करना है डिटैच भाव से, बस आज इधर है कल छोड़ के चले जाएंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, न काऊ से दोस्ती न कोई से बैर, ऐसा बाजार में कबीर के जैसा खड़े हो जाओ। आ जाए तो बहुत अच्छा, प्रेम देंगे, पालना करेंगे, टोली खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। जाए तो टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलेंगे अगले कलम। आ जाना फिर से इसी सेंटर में वर्षा लेने, जितना होगा तुम्हारे भाग्य में दे देंगे बस। ना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनको आगे रखने में बहुत ज्यादा आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि व्यक्तिगत अगर पूछे तो हमें बहनों से बहुत प्यार है, उनके उस जीवन से, उनके त्याग से और उनकी तपस्या से। वो सेंटर पे रहना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी। चुप चुप सिक सिक मरमर, जो कुमारियां पहले घर में रहती थी और बाद में सेंटर पे रहने लगी, कुमारी रहकर घर पे रहकर स्थिति बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। नौकरी करके सेंटर जाना, सुबह शाम सेवाएं करना, बहुत अच्छी स्थिति रही। ऐसी सारी कुमारियां जब सेंटर पे हमेशा के लिए आ गई, स्थितियां डगमग हो गई। परंतु माप इधर ही ज्यादा है, चाहे वो कुछ भी करे, कितनी भी उसकी स्थिति ऊपर हो, उधर घर पे रहकर मार्क्स इधर ज्यादा है। ओखली है ये, सर्दी है इसमें, मूसले खा रही है, पड़ रही है सिर पर, प्रतिपल पग पग मरना, अर्थात सेंटर का जीवन पल पल कैसा मरना है, वो वैचारिक मरना। विचारों को नीचे झुकाना होता है, यहां पर इच्छाओं को नीचे झुकाना होता है। ऐसा कोई भाई नहीं कर सकता, इसके लिए चाहे कोई कहां भी हो, बहनों से ऊपर हो ही नहीं सकता। यहां जो रहते हैं, यहां रहकर सब कुछ करना होता है, ऑलराउंड सेवा। वहां एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट है, बस थोड़ी सेवा है, उतनी कर लिया, पूरा हुआ काम। यहां एक डिपार्टमेंट नहीं, सब कुछ है, एक ही को सब कुछ करना है। आपकी तारीफ कर रहा हूं, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ, बाहर वालों से माया, बाहर वालों से परीक्षा, अज्ञानियों से, अज्ञानियों से पेपर। क्या पेपर आ सकते हैं? उनकी निंदा, अच्छा चलो उधर से निंदा, उपहास, ये सब हो सकते हैं। इनके पास क्या ज्ञान है लड़कियों के पास, चलो। और कहने वाले को पैसे नहीं थे तो इधर दे दिए, अच्छा ठीक है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इधर दे दी। बुद्धि थोड़ी कम थी, इधर दे दी। और अच्छा, ये कल की लड़कियां बालकियां हमको क्या सिखाएगी? और ये बीमार रहती थी करके यहाँ चली गई, शादी न होती थी इसके लिए यहाँ पहुंच गई और पहुंचा दी गई। शारीरिक प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, कोई विकलांगता होगी, मानसिक टाइम पास के लिए एक जगह मिल गई, टाइम पास के लिए चली गई, और बाहर वाले हाँ बाकी ये भी एक संस्था है, जैसे बाकी संस्था है ये भी एक उसमें से ऐसी संस्था है, और ये वहाँ हिप्नोटाइज कर दिया इसको, ब्रेन वॉशिंग हो गया इसका, बेचारी पहले अच्छी थी, इसके पास पैसों की फैक्ट्री है ऐसा कहते हैं। हम उधर मधुबन में गांव में सेवाओं के लिए जाते थे ना, वो लोग कहते बर्मा कुमारी इसके पास पैसों की फैक्ट्री है, वो गांव वाले ऐसा कहते थे, ये जो बर्मा कुमारी वाले जो है ना इनके पास फैक्ट्री है, ऐसा बोलते थे वो गांव वाले। और क्या परीक्षा है, ये बहुत छोटी छोटी बातें बता दी, परीक्षा अभी तक बताई नहीं। हाँ देखा, ये भी गुस्सा करते, देखा इनमें भी ये सब है। हमारे हॉस्पिटल में हम तो नहीं थे, बहुत सालों पहले कोई एक डॉक्टर थे जो थोड़ा विरोधी थे ब्रह्मा कुमार इसके ऊपर, जानते सब कुछ थे, मुरली बिरली थोड़ा सा देख के आ जाते थे, बैठते थे और आसपास के जो लोग हैं ओपीडी में, कोई सिस्टर जो बीके है, कोई दूसरा डॉक्टर जूनियर जो बीके है, उन पर कमेंट्स करते थे टॉन्ट्स, मतलब खुद कुछ नहीं करना, अमृत वेला नहीं, मुरली नहीं, कुछ नहीं, खाली मुरली ले ले देख लेते थे, लाइब्रेरी में से दो तीन चीजें देख लेते थे, तुम्हें शांत स्वरूप रहना क्रोध, और कोई थोड़ा सा भी जोर से बोला कि देखा तुम श्रीमत पे नहीं हो ना, उसी को सिखाने लगते थे। एक तो ऐसे है कि मतलब खुद तो ज्ञान में चलते नहीं है, पर पहले थे, फिर शादी वगैरह की, अभी बच्चे भी है, कहते ये बच्चे भी शिव बाबा की है। और बाहर वालों से थोड़ा पावरफुल बताओ, कोर्ट केस, पुलिस केस, झूठ, ये सब चीजें होती है, मारने तक पहुंच जाते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से सारी माया आ सकती है बाहर से। अभी हमें अभी हम एक जगह मतलब पता चली है कि एक सेंटर है, उस बहन ने लेटर लिखा है, हम अभी रमेश भाई जी को मिलने जब गए थे तो वो लेटर उनको, वो तो लेटे थे, उनको ये समस्या पढ़ के दूसरे भाई सुना रहे थे कि ऐसा लेटर आया है एक सेंटर से। वो बहन लिखती थी कि मैं एक सेंटर पर रहती हूँ, इस सेंटर पर पहले एक दूसरी बहन थी जिसने ये सेंटर बनवाया, अभी वो बहन तो पुरानी दुनिया में चली गई है, और वो जो बहन थी उसने किसी भाई से मिलकर एक जमीन दी थी, उस भाई ने वो जमीन दी थी, उसी जमीन पर सेंटर का ये मकान बना हुआ है, और उस मकान में अभी मैं हूँ, और अभी अभी पता चला है कि वो जमीन जो है वो उस भाई की थी ही नहीं, अतिक्रमण किया हुआ था, वो सरकार की जमीन है। तो भाई साहब अभी क्या करना है, रमेश भाई जी को ऐसा खत था, ऐसे कितने ही अलग अलग प्रकार के करते कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है बाहर से। तो बाहर की दुनिया से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, कहने का भाव एक ही है कि क्या करना है उस समय, हमें तब पता चलेगा जब हम अवेयर है कि है ये हो सकता है, इन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं तो इनसे इस तरह की माया आ सकती है, इसके लिए हमारा जो डीलिंग है उनके साथ बहुत क्लियर रहना चाहिए, ऑफिशियल रहना चाहिए, प्रोफेशनल रहना चाहिए, और हम ऐसे बुद्धू जैसे उनके साथ में डील ना करें कि फंस जाए, हमें भी उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो कोई भी हो, जमीन कर बातें हो, हम अपना ज्ञान बढ़ाते रहे, अंदर ही अंदर पढ़ते रहे उसके बारे में, या जिनको जानकारी है उनसे उसके बारे में ज्ञान बढ़ाते रहे, प्रोफेशन का ज्ञान, जैसे हॉस्पिटल में कई बार बहनें हॉस्पिटल में जाती उनको कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है क्या करना है, और कुछ कुछ बहनें हमने ऐसी देखी इतनी इंटेलिजेंट रहती है, उनकी माता को कुछ हो जाए तो तुरंत आएगी डॉक्टर से मिलेगी, माता को एडमिट करेगी, फिर डॉक्टर से मिलने आएगी कि कितने दिन रखना है, क्या करना है, कितने दिन में ठीक होगी, कितना खर्चा आएगा, कितना फुल, मतलब दे आर इंटेलिजेंट। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की बहनों को देखकर, कुछ कुछ बहनों को बात ही करना नहीं आता है, कैसे बात करना है वो भी नहीं पता, पूछती भी नहीं कुछ, पैसे है नहीं है कुछ बताती भी नहीं, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे कुछ नहीं। जिस क्षेत्र में आप एंट्री करते हो, कोर्ट में, हॉस्पिटल में, वहां क्या करना है कैसे करना है पता रहना चाहिए। इतने भाई बहनों को लेके जा रहे हैं मधुबन, टीसी ने पकड़ लिया बीच में, वहां क्या करना है पता ही नहीं, फंस जाते हैं ये सब बाहर की चीजों, क्योंकि अज्ञान की वजह से। प्रोफेशनल नॉलेज ही नहीं, ये नॉलेज भी बढ़ाना है। लास्ट छह हो गए ना, लास्ट है मधुबन की तरफ से माया, अंतिम अंतिम आहुति। सबसे पहला है एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट। बोला था चार लोगों को लेके आएंगे, दस लोगों को लेके आएंगे, लेके गए 12 लोगों को, तब एकोमोडेशन का प्रॉब्लम, वीआईपी का एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, और मधुबन से माया, फैमिलियरिटी, लगाव जुकाव वहां की आत्माओं से, भोजन, टोली, ये तो छोटी मोटी है। वहां जाके बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने, ये एक दूसरा उदाहरण है कि कुछ कुछ बहनें, जो एक बहन एक दूसरी बहन को हॉस्पिटल में लेके आई थी हमारे पास, वो कहती थी ये बहन को दो दो घंटे में भूख लगती है, जब देखो तब खाऊं 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 खाऊं, क्या खाऊं किधर खाऊं, कभी टोली खाऊं कभी ये खाऊं, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, जैसे क्यों पता चला। सेंटर जब वो थी रहती है, उस सेंटर पे इतने कड़े नियम है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहन जी खाने नहीं देती बिल्कुल, गिन गिन के रखी हुई एक एक चीज, चार जिलेबी है तो चार ही रहनी चाहिए उसमें, इतनी गिन गिन के हर चीज है, एक भी इधर उधर हुई तो ये जैसी इच्छा है तो बहुत है, पर सब दमन हो जाता है वहां पे, और एडजस्ट कर लिया कैसे तो अपने आप को, और जैसे इधर आ गई खुले मैदान में तो क्या करूं और क्या नहीं, क्या खाऊं और क्या नहीं, विस्फोट पूरा बाहर निकल रहा है, बस खाती रहती है खाती रहती है खाती रहती है, सप्रेशन हुआ है उधर कहीं ना कहीं, समझा नहीं है उस परिस्थिति को, शायद मोल्ड नहीं किया है ठीक से, तो ये सब चीजें होती है। दूसरा, जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसमें माता ही गुम हो जाए कोई, तो मधुबन में जा रहे हैं माता गुम, ढूंढो उसको कहाँ है, कहीं साइड सीन के लिए लेके जा रहे हैं, बस पूरी भर गई है, वो माता गायब, बच्चा गायब, वो भाई दिखाई नहीं दे रहा है, ढूंढो उसको, सारे चिल्ला रहे चलो चलो चलो, वो माता है ही नहीं, चलो। और मधुबन पहुंचे, बाबा के अवतरण का दिन, दोपहर को माता को चेस्ट पेन, हॉस्पिटल लेके गए हार्ट अटैक, उसका कोई रिलेटिव नहीं, कोई फोन नहीं उठा रहा है, बैठो उसके साथ, ये रह गया पाचन, कुछ भी ये सारी परीक्षाएं हैं, पेपर नहीं, पेपर कहेंगे या परीक्षा कहेंगे, माया नहीं कह रहे हम, पेपर टॉपिक ही हमने क्या रखा है, अग्नि परीक्षा से अग्नि शिखा जीवन। तो ये सारे पेपर आ सकते हैं मधुबन से, मधुबन की भूमि से, वहां के लोगों से टकराव हो सकता है, किसी से नहीं बनेगी, कुछ होगा कुछ होगा, और बहुत बड़ी लिस्ट गिनाई जा सकती है, परंतु इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं।